लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी तथा प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों की पुकार सुनकर व्यक्तिगत रूप से उस विश्व की देखभाल का दायित्व ग्रहण करे जिसमें हम सभी निवास करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है इंडोनेशिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिति की यात्रा पर एक रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को कल्याणकारी संगठनों के लाभार्थियों से मुलाकात की तथा उनके साक्ष्य सुनकर उनसे कहा कि उनमें से प्रत्येक जीवन के महान ओलंपिक में प्रेम का चैंपियन है। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय एशिया के इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर की 10 दिवसीय प्रेरित यात्रा पर हैं। सोमवार को आरंभ उनकी यह लंबी यात्रा इटली से बाहर उनकी 45वीं विदेश यात्रा है। बुधवार अपरान जकार्ता स्थित इंडोनेशियाई कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के मुख्यालय में संत पापा ने मानवतावादी कल्याणकारी संगठनों के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर इंडोनेशियाई कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माधीक्ष अंतोनियोस सुबियांतो ने बीमार, विकलांग और निर्धन युवा युवतियों के बीच संत पापा फ्रांसिस का हार्दिक स्वागत कर कहा कि उनके प्रति उनका प्रेम असीम और अपरिमित है।
Your Holiness, our love and admiration for you is boundless.
दो युवाओं ने संत पापा के समक्ष अपनी अपनी कहानी प्रस्तुत की। सर्वप्रथम मिमी नामक किशोरी ने अपनी कहानी सुनाई।
As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus. He didn't abandon me. Instead, he taught me how to navigate life without my physical sight.
उन्होंने बताया कि 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, किंतु एक युवा कैथोलिक के रूप में मुझे क्रूस के मार्ग में सांत्वना मिली। उन्होंने कहा कि प्रभु येसु ने उनका परित्याग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर ने मानव को हमारी दुनिया की विविधता को समृद्ध करने के लिए अद्वितीय क्षमताओं के साथ बनाया है और विकलांगता इन अद्वितीय पहलुओं में से एक है। संत पापा को उनकी करुणा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मिमी ने कहा कि मानव गरिमा को सुनिश्चित करने में कलीसिया की भूमिका महत्वपूर्ण है जो हमें आशा प्रदान करती है। तदुपरांत एंड्रू नामक युवा ने अपना साक्ष दिया, जिन्हें हल्के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और हल्की बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त पाया गया था। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता उनसे बिला शर्त प्यार करते हैं। बड़े गर्व से उन्होंने बताया कि उन्हें तैराकी के लिए पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पूर्वी जकार्ता दल में चुना गया है। साथ ही स्वतंत्र होने की अपनी इच्छा के चलते उन्होंने बैरिस्टा कोर्स और गिटार तथा ड्रम बजाना सीखना भी शुरू कर दिया है। एंड्रू ने संत पापा से आग्रह किया कि वे उनके माता पिता और दुनिया भर में विशेष बच्चों वाले सभी माता पिता को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी बीच संत पापा फ्रांसिस ने उक्त समारोह में उपस्थित सभी लोगों के प्रति तथा अपनी गवाही साझा करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इंडोनेशिया के कल्याणकारी संगठनों और इनके लाभार्थियों की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इंडोनेशिया के धर्माधीक्षों की सराहना की तथा कलीसिया में छोटे चमकीले सितारों के रूप में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। संत पापा ने उन्हें स्मरण दिलाया कि प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं और कभी किसी को नहीं भूलते। इसी भावना से संत पापा ने अपना 87वां जन्म दिवस मना रही एक महिला को शुभकामनाएं भेजकर कार्यक्रम का समापन किया, जो दुर्भाग्य से बीमार थी और कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थी। जकार्ता स्थित गृह पेमुदा युवा सदन में संत पापा फ्रांसिस ने अपनी 45वीं प्रेरितिक यात्रा के पहले दिन बुधवार को स्कोलास ओकरेंटिस के युवा सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 4 दिशा निर्देश दिए। संत पापा फ्रांसिस द्वारा स्थापित स्कोलास ओकरेंटिस एक वैश्विक शैक्षणिक परियोजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कला और खेल में शामिल करना है। स्कोलास ओकरेंटिस की इंडोनेशियाई शाखा के लगभग 200 युवा सदस्य हैं जो विभिन्निका तुंगकल इका अर्थात विविधता और एकता के महत्व को प्रकाशित करते हुए इंडोनेशिया के विभिन्न द्वीपों, स्कूलों और धर्मों से आते हैं। युवा सदन में स्कोलास ओकरेंटिस शैक्षणिक परियोजना से जुड़े कुछ एक युवाओं ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। एक महिला ने संत पापा के समक्ष वैश्विक शिक्षा के अपने अनुभवों को साझा किया। इस विषय में उनका कहना था कि वे इसे इतना पसंद करती हैं कि इसने उन्हें अपने शहर में एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में एक शिक्षक और एक परामर्शदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए कहा, स्कोलास में मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने उसे अपने छात्रों और सहकर्मियों पर लागू किया जहां मैं काम करती हूं। स्कोलास में मेरी टीम ने जिस तरह से मेरी बात सुनी, उसकी सराहना की, मुझे समायोजित किया, वह एक परंपरा है जिसकी सभी छात्रों को सख्त जरूरत है। इसी प्रकार ब्रायन नामक एक युवा ने भी साक्ष्य प्रस्तुत कर एकता विषय की पुनरावृत्ति की। उन्होंने कहा कि एकता का अर्थ है कि हम भिन्न और विविध होने के बावजूद एक हैं। हालांकि ब्रायन ने कहा कि एकता होने पर भी हम उन नकारात्मक वास्तविकताओं को नहीं भुला सकते जो आज के युवा छात्रों में विशेष रूप से समाहित है। इनमें उन्होंने भेदभाव और साइबर बदमाशी की वास्तविकताओं को रेखांकित किया तथा कहा कि इसीलिए स्कॉलर्स जैसे शैक्षणिक संगठनों का महत्व अधिक है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को बात करने और अपने अच्छे बुरे दोनों अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच मिलता है। युवाओं के साक्ष्य के प्रत्युत्तर में संत पापा फ्रांसिस ने सह अस्तित्व और शांति के 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, वास्तविकता विचारों से बेहतर है, एकता संघर्ष से बेहतर है, संपूर्ण एक भाग से बेहतर है तथा संपूर्ण एक विचार से भी बेहतर है। संत पापा ने कहा, अगर हम सब एक जैसे होते तो जीवन उबाऊ होता। उन्होंने कहा, मतभेद युद्ध को जन्म दे सकते हैं या संवाद को, हमें चुनना होगा। युद्ध हमेशा हार का कारण बनता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना यह एक खूबसूरत चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। स्कोलास ओकरेंटिस के युवाओं से मुलाकात से पहले बुधवार को जकार्ता के कैथलिक महागिरजाघर में संत पापा ने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, समर्पित व्यक्तियों, गुरुकुल छात्रों और धर्म शिक्षकों के साथ मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि वे इंडोनेशिया के ख्रिस्तियों और गैर ख्रिस्तियों सभी लोगों के लिए अपने दिलों को उदार रखें और विश्वास तथा सद्भाव के प्रसार हेतु कड़ी मेहनत करें। इसी प्रकार बुधवार प्रातः राष्ट्रपति भवन में संत पापा फ्रांसिस ने इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य विविधता में एकता को बरकरार रखा और देश की बहुआयामी वास्तविकता की प्रशंसा की जिसमें विभिन्न लोग एक राष्ट्र में मजबूती से एकजुट हैं। तथापि उन्होंने चेतावनी भी दी, विविधता में सामंजस्य के लिए सभी को सभी की भलाई की तलाश में भाईचारे की भावना को अपनाने की आवश्यकता है और इसका मतलब है संस्कृतियों की बहुलता और विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन खोजना और उसे बनाए रखना। इसका अर्थ है प्यार का पोषण करना। जकार्ता के इस्तिकलाल मस्जिद में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने एक अंतरधार्मिक बैठक का नेतृत्व करते हुए संवाद, आपसी सम्मान और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के महान उपहार हेतु इंडोनेशिया के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। जकार्ता का इस्तिकलाल मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक विशाल मस्जिद है। यहां गुरुवार को मस्जिद के ग्रैंड इमाम डॉक्टर नसरुद्दीन उमर ने संत पापा फ्रांसिस का हार्दिक स्वागत किया। संत पापा के साथ उन्होंने मैत्री की सुरंग नामक गलियारे का भी दौरा किया जो इस्तिकलाल मस्जिद को सेंट मेरी ऑफ द असम्पशन के कैथलिक महागिरजाघर से जोड़ने वाला एक भूमिगत मार्ग है। اسی افسر پر سنت پاپا فرانسس تتھا امام نصرالدین عمر نے استقلال 2024 کے سنیکت گھوشنا پتر پر بھی ہستاکشر کیے۔
استقلال مسجد میں سنت پاپا فرانسس نے گرینڈ امام کو ان کی گرم جوشی آتتھیا کے لیے دھنیواد دیا۔ سنت پاپا نے انڈونیشیائی لوگوں کے دھرموں اور وبھن آدھیاتمک سنویدناؤں کے بیچ سنواد، آپسی سمان اور سامنجسیہ پورن سہ استتو کو بڑھاوا دینے کی ان کے کام کی سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کا اتہاس ان پریاسوں کا پرمان ہے کہ ایک ستھانیہ عیسائی واستوکار فیڈرک سلابن نے اسے بنانے کے لیے ڈیزائن پرتیوگیتا جیتی تھی۔ سنت پاپا نے انہیں ہر دن اس اپہار کو وکست کرنے کے لیے پروتساہت کیا تاکہ دھارمک انوبھو ایک بھائی چارے اور شانتی پورن سماج کے لیے سندرب بندو بن سکے۔ سنت پاپا نے کہا کہ استقلال مسجد اور ماتا مریم کے سورگود گرہن مہا گرجا گھر کو جوڑنے والی میتری کی سرنگ بھی ایک سپشٹ سنکیت ہے، کیونکہ دونوں پوجا ستھل نہ کیول ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے ملاقات سنواد بھائی چارے کا ایک واستوک انوبھو سمبھو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے پرتیک اپنی آدھیاتمک یاترا میں ایشور کی کھوج میں چلیں اور کھلے سماجوں کے نرمان میں یوگدان دیں جو پارسپرک سمان اور آپسی پریم پر آدھارت ہو، جو کٹھورتا کٹرواد اور اتیواد سے رکشا کرنے میں سکشم ہو، جو ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں اور کبھی بھی اچت نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ سنت پاپا نے کہا سبھی دھارمک سنویدناؤں میں ایک ہی جڑ ہے، ایشور سے ملنے کی چاہت، انت کی پیاس جو سرو شکتیمان نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، کسی بھی طرح کی مرتیو سے زیادہ خوشی اور مضبوط جیون کی تلاش جو ہمارے جیون کی یاترا کو جیونت بناتی ہے اور ہمیں ایشور سے ملنے کے لیے خود سے باہر نکلنے ہیتو پریرت کرتی ہے۔ سنت پاپا نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے جیون پر گہرائی سے وچار کر کے ہم اس کی سراہنا کر سکتے ہیں کہ انت کی پیاس کے پرکاش میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سبھی بھائی بہنیں ہیں، سبھی تیرتھ یاتری ہیں، ہمارے بیچ جو انتر ہے اس سے پرے سبھی ایشور کی اور جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سنت پاپا نے دوستی کے بندھن کو بنائے رکھنے کے مہتو پر پرکاش ڈالا، جس سے ویویدتا کی سمردھی کے بیچ ہمیں ایک جٹ کرنے والی چیزوں پر دھیان کیندرت کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ساتھ ستیہ کی کھوج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دھارمک پرمپراؤں سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی مانویہ اور آدھیاتمک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ساتھ آ سکتے ہیں، جیسے مانویہ گریما کی رکشا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، شانتی کو بڑھاوا دینا اور پریاورن کی رکشا کرنا۔ انت میں سنت پاپا نے کہا کہ مانوتا کے خاطر دھارمک سدبھاؤ کو بڑھاوا دینا ہمارا ساجھا آہوان ہے اور حال ہی میں ہستاکچرت سنیکت گھوشنا کا شیرشک بھی یہی ہے۔ ایسا کر کے ہم ان سنکٹوں، یدھوں، سنگھرشوں کا مل کر جواب دے سکتے ہیں جو اتنی پیڑا دے رہے ہیں۔ سنت پاپا نے استقلال کی سنیکت گھوشنا سے ادھرن دیتے ہوئے کہا کہ سبھی دھارمک پرمپراؤں میں سمان مولیوں کو پربھاوی ڈھنگ سے بڑھاوا دے کر ہم ہنسا اور اداسینتا کی سنسکرتی کو ہرانے اور صلح ایوم شانتی کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔
انڈونیشیا میں اپنی پریرتک یاترا کے انتم دن پوپ فرانسس نے جکارتا کے گیلورا بنگ کارنو اسٹیڈیم میں کرستیاگ ارپت کیا۔ لال گیٹ سے اسٹیڈیم میں پرویش کرنے سے پہلے پوپ نے اسٹیڈیم سے سٹے اسٹیڈیم مانڈیا اے میں اپستھت وشواسوں کے بیچ کھلی کار سے بھرمن کر ان کا ابھیوادن کیا۔ لاتینی اور انڈونیشیائی بھاشا میں ارپت کرستیاگ میں قریب 60,000 وشواسوں نے بھاگ لیا۔ سنت پاپا نے کرستیاگ میں کلکتہ کی سنت تیریسا کی یاد کی۔ انہوں نے اپدیش میں کہا
انکونٹرو کون جیسو چی کیاما ا ویویرے دوے اٹیجامنٹی دوے،
یسو کے ساتھ ملاقات ہمیں دو آدھاربھوت منوبھاؤں کو جینے کا نمنترن دیتا ہے جو ہمیں ان کا شسیہ بناتا، ایش وچن کو سننا اور ایش وچن کو جینا۔ پہلے سننا کیونکہ سب کچھ سننے سے آتا ہے، سوئم کو ان کے پرتی کھولنے سے، ان کی مترتا کے انمول افار کا سواگت کرنے سے۔ उसके बाद ईश वचन को जीना जिसको हमने ग्रहण किया है, ताकि हमारा सुनना व्यर्थ ना हो और हम खुद को धोखा ना दें। वास्तव में जो लोग केवल अपने कानों से सुनने का जोखिम उठाते हैं, वे वचन के बीज को अपने हृदय में उतरने नहीं देते और इस प्रकार अपने सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदलने नहीं देते। जबकि सुनने के माध्यम से दिया गया और प्राप्त किया गया वचन हमारे अंदर जीवन लाना चाहता है। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, सुसमाचार पाठ जिसकी घोषणा हमने अभी अभी की है, हमें उन दो महत्वपूर्ण मनोभावों, वचन को सुनने और वचन को जीने पर चिंतन करने में मदद करता है। सुसमाचार लेखक बतलाते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आए और ईश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी। वे ईश्वर के वचन को खोज रहे थे, उनके लिए भूखे और प्यासे थे और उन्होंने इसे यीशु के शब्दों में गूंजते हुए सुना। संत पापा ने कहा, यह दृश्य सुसमाचार में कई बार दोहराया गया है, जो हमें बतलाता है कि मानव हृदय हमेशा एक सत्य की खोज में रहता है जो उसकी खुशी की चाह को पूरा कर सके। इसलिए हम केवल मानवीय शब्दों, इस दुनिया की सोच और सांसारिक निर्णयों से संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें हमेशा ऊपर से एक प्रकाश की आवश्यकता है जो हमारे कदमों को आलोकित करे। मानवीय शब्दों की उलझन और व्यर्थता के बीच ईश्वर के वचन की आवश्यकता है, जो हमारी यात्रा के लिए एकमात्र सच्चा दिशा सूचक है, जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाने में सक्षम है। संत पापा ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिष्य का पहला काम बाहरी तौर पर पूर्ण धार्मिकता का वस्त्र पहनना, असाधारण काम करना या भव्य उपक्रमों में शामिल होना नहीं है। इसके बजाय पहला कदम यह जानना है कि उद्धार करने वाले एकमात्र शब्द यीशु के वचन को कैसे सुनना है। जब प्रभु किनारे से खुद को थोड़ा दूर करने के लिए पतरस की नाव पर चढ़ते हैं और इस तरह लोगों को बेहतर ढंग से उपदेश देते हैं, इस प्रकार हमारे विश्वास के जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम अपने जीवन रूपी नाव पर यीशु का स्वागत करते हैं, उनके लिए जगह बनाते, उनका वचन सुनते और खुद को उनसे प्रश्न पूछे जाने, चुनौती दिए जाने और बदलने की अनुमति देते हैं। साथ ही प्रभु का वचन हमें उससे ठोस रूप से आत्मसात करने के लिए कहता है। नाव से भीड़ को उपदेश देने के बाद यीशु पेत्रुस की ओर मुड़ते हैं और उससे उस वचन पर दांव लगाने का जोखिम उठाने की चुनौती देते हैं। गहरे पानी में जाओ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु का वचन एक अमूर्त विचार बनकर नहीं रह सकता, यह हमें अपनी दृष्टि बदलने और अपने हृदय को ख्रिस्त के हृदय की छवि में बदलने के लिए कहता है। संत पापा ने गौर किया कि बेशक इस आह्वान को नकारने के लिए हमेशा बाधाएं और बहाने होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम भी अनेक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, हम कभी कभी अपर्याप्त महसूस करते हैं। हमसे भी कहा जाता है कि हम अपनी असफलताओं के कैदी ना बने, बल्कि पतरस की तरह विनम्रता और विश्वास के साथ यीशु की ओर देखें और उन पर भरोसा रखें। कलकत्ता के संत तेरेसा, जिनकी आज हम स्मृति मना रहे हैं और जिन्होंने अथक रूप से सबसे गरीब लोगों की देखभाल और शांति एवं समाज को बढ़ावा दिया, कहा करती थीं कि भले ही हम कुछ भी ना काटें, लेकिन बोने से कभी ना थकें। संत पापा ने कहा, भाइयों एवं बहनों, आप अपने जहाज चलाने और जाल बिछाने से ना थकें, हमेशा भाईचारे का सपना देखने की हिम्मत करें, कलीसिया और समाज की भलाई के लिए एक साथ चलें, आशा के निर्माता बने, सुसमाचार की आशा जो निराश नहीं करती बल्कि इसके बजाय हमारे लिए अनंत जीवन के द्वार खोलती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।